हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 8, 9 और 10। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशये नराधसां स्वधामनि ब्रह्मणिरोऽस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिन्द पुल्कषा आवीर्य शुम्भा यवनाक सादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वीतन्वता चस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदत। भूतैर्महद्भि य इमा पुरो विभू निर्माय शीति यदमूषु पुरुष। भूतैर्गुणनशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं साम्यं यन्मुखान् गुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति मे शिवेन। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान के विशिष्ट अवतारों के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं वेदाः सब सपत्न्यदित पत्रिभिरन्ति राख्यो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसि वनानि तस्मा अदातृभगतिं गृणति प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यदस्तापत्न्युदितपत्रिभिरन्तिराख्यो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसि वनानि तस्मा अदातृभगतिं गृणति प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यदास्तात् वेद सपत्न्युदितपत्रिभिरन्तिराख्यो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसि वनानि तस्मा अदातृभगतिं गृणति प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यदस्तात्। शब्दार्थ वेद सपत्न्य अदित। वेद यानी बंधित, सपत्नी यानी सौतेली माता, अदित कहे गए पितृ भी यानी तीखे वचनों, अंति यानी समक्ष राजा, राजा के सामने, बाला यानी बालक, जब बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने वाले थे तो उनकी जो सौतेली माता थी उन्होंने जो तीखे शब्द कहे, यानी वो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान के उस स्वरूप के बारे में जो ध्रुव महाराज को दर्शन लेने के लिए आए थे। वे कहते हैं सन उपगत, सन मतलब ऐसा होते हुए, उपगत मतलब घृणित कर लिया, तप से कठोर तप, और जब ध्रुव महाराज को वो शब्द बहुत ज्यादा कठोर लगे तो उन्होंने क्या किया, अपनी माता के, अपनी माता से जो उन्होंने बताया कि भाई आप जाके भगवान से नारायण की भक्ति करो, तो फिर वो उन्होंने कठोर तपस्या की। कहाँ जाकर, वनानि तस्मै उदात, वनानि मतलब वन में, तस्मै अतः उदात, अदात मतलब पुरस्कार रूप दिया, ध्रुव गति ध्रुव लोक, और भगवान उनकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया। तस्मा अदात ध्रुव गति गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवंती मोनयो यदुपर्यदात्यात्। दिव्य मतलब दिव्य, उच्च लोकों के निवासी, स्तुवंती मतलब प्रार्थना करते हैं, मोनय बड़े बड़े साधु, यत उपस्थि जिससे, यत्ना जिससे, अपरि मतलब ऊपर यानी अधस्तात यानी नीचे, मतलब नीचे और ऊपर के सारे लोग, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सब में जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब उसकी स्तुति करते हैं या पूजा करते हैं। अनुवाद देखिए, राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने के लिए करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों में सभी मुनि करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराजा उत्तानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो वे अपने पिता की गोद में बैठे थे किंतु उनकी सौतेली माता को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः राजकुमार राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्ना बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत ही अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के पास गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकी थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेशानुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं प्रश्निगर्भ नामक चतुर्भुजी भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान के साक्षात्कार दर्शन प्राप्त हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराजा को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वसुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया और असल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अविचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, वरना जो लोग उससे ऊपर हैं, उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिंशणी गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलाने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध में पढ़ने को मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम क्योंकि भगवान के अवतारों को संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने भगवान के विष्णुगर्भ जो के ध्रुव महाराज को प्रसन्न करने के लिए संसार में आए थे, उसके विषय में पढ़ा। और ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन चतुर्थ स्कंध में आएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के प्रथु अवतार के विषय में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र निष्पृष्ट पौरुषभगं निरयी पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदं चलीभि दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुषभगं निरयी पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येने यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुषभगं निरये पतन्तिम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येने यद्वेनम् उत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र। यद्वेनम् यानी जब राजा वेन, उत्पथगतं यानी पथ भ्रष्ट हो गया, द्विज द्विज यानी ब्राह्मणों के वाक्य यानी श्राप के वचन, वज्र यानी वज्र निष्प्लुष्ट यानी भस्म किया जाकर, जब वेन के इतने अत्याचार बढ़ गए थे तो जो ब्राह्मण है उन्होंने उनको श्राप दिया था जिससे वो बहुत ज्यादा उनका जो सम्मान था वो समाप्त हो गया था और नरक की ओर वो आगामी हो गए थे। पौरुष यानी महान कार्य, भग्म यानी ऐश्वर्य, निरये यानी नरक में, पतंतम गिरते हुए, वो तो नरक में जाने वाले थे लेकिन भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, क्या हुआ, तत्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेव तत्वा यानी उद्धार करके, अर्थितो यानी प्रार्थित, उद्धार के कारण जगति यानी संसार में पुत्र पदम, पुत्र का स्थान च ले भी प्राप्त किया। और वो कौन थे, महाराजा पृथु के रूप में नाभि के जो पुत्र थे वहीं उनके यहाँ पर पृथु महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पिता को नरक में जाने से बचाया और उसके साथ साथ दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येने, दुग्धा यानी दोहा, किसको, वसूनि वसुधा पृथ्वी को दोहा और सकलानि सभी प्रकार के उपज तो थे वो उसमें से प्राप्त किए, क्योंकि महाराजा वेन के अत्याचार की वजह से पृथ्वी ने सारे उपज देना बंद कर दिए थे, इसलिए महाराजा पृथु ने आकर पृथ्वी से दोबारा वो सारी उपज खनिज जो भी है वो सब वापस प्राप्त किए और अपने पिता को नरक में जाने से बचाया। अनुवाद, महाराजा वेन कुमार्गी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा, किंतु भगवान ने अपनी अहितुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्ण आश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षण होते हैं। ब्राह्मण जन प्रशासकों राजाओं को अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे और किस प्रकार से पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद में से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनुसंहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। अतः उपलब्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार अल्पबुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ दर्शन की आवश्यकता होती है। मनुसंहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रामाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से ही विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण तथा राजा के ज्ञान के इन नामक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे, फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताएं, पहले जो राजा होते थे वो किस तरह से ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे वो ब्रह्म संहिता और जो मनुस्मृति है, मनुसंहिता, उन सब शास्त्रों के अनुसार राजा को शिक्षा देते थे कि किस तरह से तुम्हें कार्य करना है कि तुम्हारी पूरी प्रजा का कल्याण हो। जिस तरह से छोटे बच्चे को अपने कल्याण के विषय में पता नहीं होता, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, माता पिता के ऊपर होती है, बोध होती है, उससे भी नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और हमारा कल्याण, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता। इसलिए राजा के पास बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण होते थे, वो उन्हें सलाह देते थे। और राजा कोई ऐसा नहीं होता था कि भाई जो उसकी मर्जी आए वो करे, वो ब्राह्मणों के आदेशानुसार कार्य करते थे और इस तरह से जन समुदाय का भी कल्याण होता था। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये पद्धति तो चंद्रगुप्त मौर्य तक चल रही थी और वहां पर जो चाणक्य पंडित थे अवैतनिक, मतलब वो ब्राह्मण कुछ लेते देते नहीं थे, बस उनका काम था। ऐसा नहीं कि वो सर्विस करते थे राजा की, अगर सर्विस करेंगे तो राजा को आदेश नहीं दे सकेंगे ना, वो अवैतनिक थे, मतलब वो कुछ से उससे पैसे भी नहीं लेते थे, बस सिर्फ धर्म के अनुसार राजा को चलाते थे। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, महाराजा वेन ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत ही विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने महाराजा वेन को उसके दुराचार के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। अब महाराजा वेन जो थे वो बहुत ही कुमार्गी थे, वो बहुत दुष्कर्मी थे और वो ब्राह्मण लोग जो भी बोलते थे ना कि ऐसा करो, तो वो उनकी बात को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनको केवल इंद्रिय तृप्ति में फंस गया था। लेकिन ये ब्राह्मण अत्यंत ही विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करते हुए समस्त प्रजा को पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे और उन्होंने महाराजा वेन को उसके दुराचार के लिए दंडित करना चाहा और उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की कि इसको दंडित कैसे किया जाए, फिर उसको श्राप भी दे दिया। और जैसे उसको श्राप मिला तो वो मर गया फौरन से। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घ आयु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीर्वाद ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो महापुरुष हैं, जो सीनियर भक्त हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि वो नाराज हो जाए, क्योंकि देखो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम महापुरुषों की अवज्ञा करेंगे, सिर्फ उनकी बात नहीं मानेंगे, दीर्घायु नाश हो जाएगी, है ना, हमारी आयु नष्ट हो जाएगी, और आज्ञा पालन माने जो सुकृति है वो नाश हो जाएगी, ख्याति मतलब हमारा जो फेम है वो समाप्त हो जाएगा, सत्यता नाश हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात उच्च लोग जाने का अवसर समाप्त हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों की आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए, उनका कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पदचिन्हों पर दृढ़ता से चले, निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराजा वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, कोई राजा बनता है, एक तो मनुष्य योनि कितनी मुश्किल से मिलती है, 84 लाख योनियों को पार करके किसी को मनुष्य की देह मिलती है, और उस मनुष्य में भी कुछ लोग तो कितने गरीब होते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं, कुछ लोग उससे थोड़े ही सही होते हैं, लेकिन कुछ लोग के शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं होता है, या फिर हाथ पांव नहीं होते हैं या कुछ, लेकिन मनुष्यों में भी एक सुंदर और सुशील राजा बनना कितनी बड़ी बात है, है ना। तो डेफिनेटली उसके लिए तो बहुत ज्यादा पुण्य करने पड़े होंगे। तो महाराज वेन जो है वो अपने पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से राजा तो बना था, लेकिन राजा बनने के बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, महापुरुषों की आज्ञा का पालन, वो उन्होंने नहीं किया, और जिसके कारण उसका सब कुछ विनाश हो गया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वामन पुराण में महाराजा वेन के इतिहास तथा उसके पतन का वर्णन पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराजा पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराजा पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उभारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसा ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब महाराजा पृथु को पता चला कि उसके पिता की कितनी दुर्दशा है, तो उसके लिए वो उसे वहां से लेकर आए जहाँ म्लेच्छ परिवार में उनका जन्म हुआ, और कुरुक्षेत्र में लाकर उनको वहां पर समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। तो ये पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो माता पिता को नरक में जाने से बचाए। ये दोनों का परस्पर होता है। पिता का ये कर्तव्य है कि अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे कि वो जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवत धाम में जा सके, और पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि वो किस तरह से पवित्र कार्य करे कि उसके माता पिता चाहे किसी भी स्थिति में है वो अवश्य भगवत धाम को प्राप्त कर ले। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार के फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसा ही पुत्र सुयोग्य होता है। तो ये पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे कार्य करे कि उसके पिता, उसके पुरखे जो हैं, वो भगवत धाम तक पहुंचे, और उसके लिए यदि पिता भगवान का भक्त होता है तो सबका कल्याण होता है, और अगर स्वयं भगवान ही पुत्र बनकर आए तो फिर तो कहना है क्या। आगे ब्रह्मा जी ऋषभ देव अवतार के विषय में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाभे रसा वृषभ आस सुदेवी सोनु यो वै चचार समद्रे जड योग चयाम यत् पारमहस्य मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांत करण परिमुक्त संग नाभि रसा वृषभ आस सुदेवी सूनु यो वै चचार समद्रि जड योग चर्याम यत् पारमहस्य मृषयः पदमामनन्त स्वस्थ प्रशांत करण परिमुक्त संग नाभिरसावृषभ आस सुदेवी सोनु यो वै चचार समद्रि जड योग चर्याम यत् पारमहस्य वृषभ ऋषय पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांत करण परिमुक्त संग नाभि रसा वृषभ आस सुदेवी सोनु। नाभि यानी महाराजा, नाभि के असो यानी श्री भगवान, ऋषभ यानी ऋषभ आस हुए, सुदेवी यानी सुदेवी के सोनु यानी पुत्र, और यो वै सचार समद्रिग जड़ योग चर्या, यो वै जिन्होंने वै यानी निश्चय से चचार संपन्न किया, समद्रिक यानी समदृषि, जड़ का मतलब होता है भौतिक, योगचर्या योग अभ्यास, और यत्पारम हंस्यम जो सिद्धि की सर्वोपरि अवस्था है, ऋषयः यानी ऋषिगण, पदम यानी पदम अवानन्ति यानी स्वीकार किया, और स्वस्थ प्रशांत करण परि मुक्त संगे, स्वस्थ अपने में स्थित, स्वस्थ मतलब अपनी आत्मा में स्थित, और प्रशांत मतलब स्थिर किया करण इंद्रिया परि मुक्त संगे पूर्णतया मुक्त संगे मतलब पूर्णतया मुक्त हो गए किससे, भौतिक कलमश से। अनुवाद, राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदृष्टि बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की, इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीत समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार के योग सिद्धियां की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधन की सहायता किए बिना हाथ से ही उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है, किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का
असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में। महाराजा ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते थे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्पबुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते थे और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंध फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित ना बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, किंतु सामान्य लोगों के लिए नहीं है। असाधारण अभ्यास दुष्कर है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से जड़ योग के विषय में बता रहे हैं। ये ऐसा योग होता है जब इंसान स्व में स्थित होता है, यानी उसको शरीर का कोई भान नहीं होता, उसके शरीर के साथ कुछ भी हो रहा हो उसको उसकी कोई फिक्र नहीं होती, उसका मन, उसका तन, उसकी बुद्धि, उसके विचार भगवान के अंदर स्थित होते हैं। फिर वो अपनी शरीर की, बाह्य शरीर की कोई भी परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि वस्त्र की भी उसे चिंता नहीं होती है, ना ही मलमूत्र त्यागने की। तो ऋषभदेव जो थे वो बहुत परम सिद्ध थे। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह उनका जो विष्ठा है उनमें से सुगंध आ रही थी। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि ये जड़ योग को अपना, ये तो परम हंसों के ये होता है। साधारण व्यक्तियों, सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करण अर्थात इंद्रियों को वश में करना, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अंतिम लाइन में देखिए, स्वस्थ प्रशांत करण परिमुक्त संगे। स्वस्थ मतलब जड़ योग में क्या होता है, स्व में स्थित होता है आत्मा में। प्रशांत करण उसकी इंद्रियां जो हैं वो शांत होती हैं और परिमुक्त संगे जो भौतिक संग है उसे कम्प्लीटली वो मुक्त रहता है, जैसा कि श्लोक में बताया गया। योग की सूची प्रक्रिया चाहे इसे जो भी नाम दे, संयमित इंद्रियों को वश में करने तथा खुद को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। इस योग में विशेष जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस योग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्त्रोत्र से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभिक के पुत्र तथा राजा अग्निग्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही स्त्री के भिन्न भिन्न नाम है। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने हम सब कलयुग वासियों के लिए एक सुझाव दिया है कि ये सब जो जड़ योग और दूसरे जो योग है वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इस योग में विशेष रूप से भक्ति योग की विधि का समर्थन किया गया है। जितने भी बड़े
महापुरुष हैं वो भक्ति योग को अपनाते हैं और भक्ति योग जो है वो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करना है। जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा और हम भगवान का नाम जप कर इस युग में भगवान ने स्वयं कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ जप यज्ञ करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल सुगम और प्रैक्टिकल है। इसलिए दूसरी विधियों को ना अपनाकर कलयुग के लोगों को जप यज्ञ और भक्ति योग की इस विधि को अपनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे ब्रह्मा जी भगवान के हयग्रीव अवतार के विषय में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्रे ममा स भगवान अयशीर शाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस् तपनीय वर्ण छन्दोमयो मखमयो किल देवतात्मा वाचो बभूव रुषति श्वसतोस्य नस्ता। सत्रे ममा स भगवान् अयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुष तपनीय वर्ण छन्दोमयो मखमयो किल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषति श्वसतोस्य नस्ता। शब्दार्थ देखे सत्रे ममा स भगवान हयशीर शाथो। सत्रे मतलब यज्ञोत्सव में मम यानी मेरे द्वारा आस प्रकट हुए भगवान श्री भगवान हय शीरशा यानी घोड़े के सिर धारण करके। ब्रह्मा जी कहते मैंने यज्ञ किया और ब्रह्मा भगवान का एक स्वरूप यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ। हय शीरशा है कहते हैं घोड़े को, शीर मतलब सिर, घोड़े के सिर वाला। अथ साक्षात स यज्ञ पुरुष, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वो यज्ञ पुरुष यानी ऐसे पुरुष जो यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होते हैं। तपनीय वर्ण, तपनीय मतलब सुनहरी, वर्ण मतलब रंग। छंदोमय साक्षात वैदिक स्तोत्र। मखमय छंदोमयो मखमयो किल देवता, मखमयो मतलब साक्षात यज्ञ। अखिल देवतात्मा जो कुछ संभव है वह सब देवतात्मा यानी देवाओं की आत्मा। वाचो बभूवु रुष्यति, वाचो मतलब वाणी, बभूवु यानी सुने जाते हैं, उष्यति यानी कानों को अत्यंत ही सुंदर लगने वाले, श्वसत सांसे लेते हुए, अस्य इसके, नस्तः यानी नथनों से, जब वो सांस ले लेते उनके नथनों से इतने सुंदर वैदिक मंत्रों की गूंज हो रही थी। अनुवाद देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे यानी ब्रह्मा के द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक स्तोत्र प्रायः उन सब काम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र हैं। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनेला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्र की ध्वनियां प्रकट हुई। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक स्तोत्र प्राय उन सब काम कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्त की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र हैं। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न ना करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब कोई जीव भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसको सारे फल, चाहे वो यज्ञों के हों, वेद अध्ययन के हों, वो सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाने, क्योंकि भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र है। तो भगवान यहाँ पर जैसे बताया गया छंदो मयो मख मयो किल देवतात्मा, वो साक्षात यज्ञ है उनके और वो समस्त देवताओं के परमात्मा है, वो साक्षात वेद भी है। तो भगवान के अंदर सब कुछ है। जो भगवान की भक्ति करता है उसे अलग से कोई यज्ञ संपन्न करने की जरूरत नहीं, वेदाध्ययन की जरूरत नहीं, उसे वो स्वयं जब भगवान की भक्ति करता है तो उसे सारे के सारे फल स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भक्त को केवल भगवान से प्रेम करना होता है, भगवान के नाम जप करना होता है, भगवान के पवित्र जो ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतम भगवत गीता उनको श्रवण करना होता है, और बाकी उसको कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसे वो सारे फल स्वतः प्राप्त होते हैं। आगे ब्रह्मा जी भगवान के मत्स्य स्वरूप के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मत्स्यो युगांत समयी मनोनोपलब्ध क्षोणी मयो निखिल जीव निकाय केत विस्त्रसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान् मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध क्षोणी मयो निखिल जीव निकाय केत विस्त्रसितानुरुभयो सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान् मत्स्यो युगांत समये मनु नोपलब्ध। मत्स्यो यानी मत्स्य होता है, युगांत जब कल्प का अंत होता है, समये यानी उस समय, मनुना यानी भावी वैवस्वत मनु द्वारा, उपलब्ध यानी दृश्य, क्षोणी मयो निखिल जीव निकाय केत, क्षोणी मयो मना पृथ्वी तक, निखिल यानी समस्त, जीव जीव आत्मा, निकाय केत मतलब आश्रय, विस्तृतान मतलब उससे उद्भूत होता है, उरु यानी जो महान है, भय यानी भय से, विस्रातानुरुभये सलिले मुखान में, सलिले मतलब जल में, मुखात यानी मुख से, मैं यानी मेरे, आदाय तत्र विजहारह वेद मार्ग, आदाय यानी ला कर तत्र वहां पर, विजहार यानी उपभोग किया जाता है निश्चय ही, वेद मार्ग यानी समस्त वेदों का। ब्रह्मा जी कहते हैं कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीव आत्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे यानी ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जलराशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब एक मनु समाप्त होता है, यानी एक मनु की आयु कितनी होती है, ब्रह्मा की टोटल आयु 1000 चतुर्युगी है और 14 मनु में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो एक मनु के पास 71 मनवंतर की राशि आती है। और जब एक मनु की आयु समाप्त होती है तो पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो सब नष्ट हो जाते हैं और तब ब्रह्मा की को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। ब्रह्मा जी को भी लगता है कि कौन सा मतलब प्रलय हो गई होती है ना। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। देखेगा मतलब जब वापस से वैवस्वत मनु आता है तो ये प्रलय होता है तो वो मनु देखता है उसको, मनु के आरंभ में उसको देखता है। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं भी होंगी जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के गत अनुभव पर आधारित है क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान ने न केवल समस्त जीव आत्माओं यथा देवताओं पशुओं मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे वर्ण वेदों को भी बचाएंगे। तो ये पहले से ही पता इसलिए क्योंकि ये बार बार होता है। जब भी मत्स्य अवतार होता है तब सारे वेदों को भगवान बचाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, पशुओं की मनुष्यों की। तो इस तरह ये भगवान हर जब भी प्रलय होता है, जब भी मनु का अंत होता है तो उस समय भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों को सुरक्षित रखते हैं। और इस तरह से आज हमने ये अवतार पढ़े, ऋषभ देव का अवतार, मत्स्य अवतार और ध्रुव महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेकर आए थे और नाभि के पुत्र ऋषभ देव ने किस तरह से जड़ योग को अपनाया, उन सारे अवतारों को पढ़ा। आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।